ये आकाशवाणी है। अब आप भवतारिणी से समाचार सुनिए। भारत ने कनाडा के कार्यवाहक उच्चायुक्त स्टीवर्ट रॉस व्हीलर सहित 6 राजनयिकों को निष्कासित कर दिया है। उप उच्चायुक्त पैट्रिक हेबर्ट, प्रथम सचिव मैरी कैथरीन जोली, यान रॉस डेविड, एडम जेन्स और पाउला और ज्वेला को भी निष्कासित कर दिया गया है। इन राजनयिकों से 19 अक्टूबर से पहले भारत छोड़ने को कहा गया है। भारत ने कनाडा में अपने उच्चायुक्त और अन्य राजनयिकों और अधिकारियों को ये कहते हुए वापस बुलाया है कि उसे उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने की वर्तमान कनाडा सरकार की प्रतिबद्धता पर भरोसा नहीं है। इसी घटनाक्रम में कनाडा के प्रभारी उच्चायुक्त को कल शाम नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय बुलाया गया था। उन्हें बताया गया कि कनाडा में भारतीय उच्चायुक्त और अन्य राजनयिकों और अधिकारियों को आधार ही निशाना बनाना अस्वीकार्य है। कहा गया कि उग्रवाद और हिंसा के माहौल में ट्रूडो के नेतृत्व वाली वर्तमान कनाडा सरकार के कार्यों से भारतीय राजनयिकों की सुरक्षा खतरे में पड़ गई है। भारत के खिलाफ उग्रवाद, हिंसा और अलगाववाद के लिए ट्रूडो सरकार द्वारा समर्थन के जवाब में आगे के कदम का अधिकार भारत के पास है। इससे पहले भारत ने कनाडा सरकार के उन दावों को पूरी तरह से खारिज कर दिया था जिनमें कनाडा में भारतीय उच्चायुक्त और कुछ अन्य राजनयिकों को एक मामले में जांच के दायरे में बताया गया था। विदेश मंत्रालय ने बताया कि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने पिछले साल सितंबर में भारत पर कुछ आरोप लगाए थे। भारत की ओर से इस मामले में लगातार सबूत मांगे जाने के बावजूद कनाडा सरकार ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के विश्व दूरसंचार मानक सम्मेलन और इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 8वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। आईटीयू के इतिहास में यह पहली बार होगा कि प्रतिष्ठित वैश्विक कार्यक्रम भारत और एशिया प्रशांत क्षेत्र में हो रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल अल्जीरिया की राजधानी अल्जियर्स में राष्ट्रपति अब्देल मजिद तैवानो के साथ द्विपक्षीय बैठक की। दोनों देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक और आर्थिक मामलों सहित विभिन्न मुद्दों पर प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता हुई। अल्जीरिया यात्रा के अंतिम दिन आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगी। वे सीदी अब्देल्ला यूनिवर्सिटी में छात्रों को संबोधित करेंगी और रोमन साम्राज्य के अवशेष देखने जाएंगी। इसके बाद वे कल मारिटानिया का दौरा करेंगी। 17 और 19 अक्टूबर को वे मलावी जाएंगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज इस्लामाबाद की 2 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। अपनी इस यात्रा से पहले विदेश मंत्री ने कहा कि उनकी पाकिस्तान यात्रा एक बहुपक्षीय कार्यक्रम के लिए है और उन्होंने द्विपक्षीय वार्ता से इनकार किया था। ये 9 वर्षों में किसी भारतीय विदेश मंत्री की पाकिस्तान की पहली उच्च स्तरीय यात्रा होगी। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण ने 8 अनुसूचित दवाओं की अधिकतम कीमतों में संशोधन किया है। इन दवाओं की अधिकतम कीमतों में 50% की वृद्धि को मंजूरी दी गई है। इनमें से अधिकांश दवाएं कम लागत वाली हैं और आमतौर पर देश के सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों के लिए पहली पंक्ति के उपचार के रूप में उपयोग की जाती है। इनका उपयोग अस्थमा, ग्लूकोमा, थैलेसीमिया, तपेदिक, मानसिक स्वास्थ्य आदि विकारों के उपचार के लिए किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के विस्तार भवन का भूमि पूजन समारोह कल नई दिल्ली में आयोजित किया गया। 86,000 वर्ग मीटर में फैला निर्माण कार्य 2 चरणों में पूरा किया जाएगा। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि यह विस्तार भारत के संविधान की तरह ही एक जीवित इकाई के रूप में काम करेगा। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के दौरान तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, दक्षिण तटीय आंध्र प्रदेश और यनम में अत्यधिक भारी वर्षा की भविष्यवाणी की है। आईसीसी महिला 2020 क्रिकेट विश्व कप में न्यूजीलैंड ने दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तान को 54 रन से हरा दिया है। इस जीत के साथ न्यूजीलैंड ग्रुप ए से सेमीफाइनल में पहुंचने वाली 2री टीम बन गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।